आप कैसे रंग का चश्मा चढ़ाए हैं, आपको ऐसा दिखता है। आप चश्मे के रंग की गुलामी छोड़ दीजिए, आप सही ढंग से देखिए। रंगीन चश्मा पहनो हमारी मना नहीं है हजूर, आप भले लाल पीला कैसा रंग बिरंगी चश्मा पहनो, और उस चश्मे से भले आपको रंग बिरंगी दिखे, तो आप रंग बिरंगी देखो हमारी मना नहीं है, लेकिन आप विवेक का उपयोग करो कि ये चश्मे के कांच का कलर है। जयराम जी की। जब पीला चश्मा पहनो तो आप ये याद रखना कि पीले रंग वाला चश्मे के कारण चीज पीली दिखती है। जिस वक्त आप चश्मा पहनते हो, चश्मे के साथ आप थोड़ा सावधान रहकर विवेक रखो। चश्मे के साथ बहुमत, ये चश्मे का रंग है। ऐसे आपके मन में जैसा अभाव, जैसी वृत्ति आती, उसी वक्त आपको वैसा दिखता है। लेकिन वृत्ति का चश्मा, मान्यता का चश्मा, आप विनोद के लिए चढ़ाओ हम मना नहीं करते, लेकिन हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि आप चश्मे के कलर के गुलाम मत बनिए, आप सत्य को परखने वाले सात्विक व्यक्ति बनिए। इस्लाम कहता है कि जो अल्लाह को नहीं मानता, कुरान को नहीं मानता, वो काफर है। मिल जाए तो उसको अपने इस्लाम में लाओ, नहीं मानता तो कत्ल करो। ये आपका चश्मा है। अगर अल्लाह के सिवा और कोई नहीं, ला इल्लाह इल्लल्लाह, जब खुदा के सिवा कोई नहीं, तो हिंदू काफर कैसे हुए और कत्ल करने योग्य कैसे हुए। जयराम जी की। ये चश्मा है अपने अपने मजहब का, अपने अपने मत का, अपने अपने पंथ का दुर्ग है, जो मानव मानव के प्रति जहर उगालता है, मानव मानव के प्रति अशांति की आग जला देता है। ईसाई कहता है कि हमारा ही अच्छा है, हिंदू कहता है हमारा ही अच्छा है, पारसी कहता है हमारा ही अच्छा है। भाई हमारा 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 जहाँ से उठता है, वहाँ सब का एक परमात्मा है। आप अपने अपने चश्मों के रंगों से लड़ने झगड़ने की बजाय चश्मों को देखने की सत्ता जहाँ से मिलती है, वेद कहता है नन्हे बच्चे उधरी आ जाओ, उधरी उस सत्य की शरण पहुँच जाओ। सर्वस्तर तु दुर्गाणी, हम सब अपने अपने दुर्ग से तर जाए। सर्वो भद्राणी पश्यतु, हम सब मंगलमय देखें। फिर वेद भगवान का कितना ये समझने योग्य वचन है, सर्व सद्बुद्धि मापनो तू, हमको सद्बुद्धि प्राप्त हो। हमारे आग्रह बुद्धि नहीं, हमारी अपनी वासनामय मति नहीं, सत्यमय मति प्राप्त हो। अपनी अपनी वासना से देखेंगे तो महाराज बिल्ली ने देखा कि मेरे को स्वप्न आया चूहों की बरसात हो रही। कुत्ता बोलता है बेवकूफ, कहीं की चूहों की कभी बरसात होती है, हड्डियों की बरसात हो रही। तो बिल्ली को स्वप्न आएगा चूहों की बरसात का, और कुत्ते को स्वप्न आएगा हड्डियों की बरसात का, लेकिन सेठ को स्वप्न आएगा रुपयों की बरसात का, और संत को स्वप्न आएगा श्रोताओं की बरसात का, और श्रोताओं को स्वप्न आएगा कि संत की कथा की बरसात हो रही। ये आप अपनी अपने चश्मे के अनुसार सपना देखते हैं, लेकिन सपना जिसकी सत्ता से दिखता है और सपना जिसकी सत्ता से बदलता है। सपना नहीं था तब भी थे आप, सपना है तब भी आप है, और सपना बदल जाता है फिर भी आप हैं। वो आप सपने के भी साक्षी हैं, जागृत के भी साक्षी हैं, गहरी नींद अच्छी आई कि नहीं आई उसके भी साक्षी हैं। उस साक्षी स्वरूप सत्य को पहचान लो, सदा के लिए सब दुखों से जान छूट जाएगी। मन तू ज्योति स्वरूप अपना मूल पिछान, तू ज्योति स्वरूप है अपने मूल को पिछान। पंजाब में कहावत है तक दे बाजी नू बाजीगर नू कोई नहीं तक दे, इसलिए मरदेसी सारे लड़ मरदेसी। ओ तक दे बाजी नू बाजीगर नू कोई नहीं तकदा, जो बाजीगर नू तकदा है उन्हां दा हिरदा खुल जांदा सी। नानक सतगुरु पेटिया मैल जन्म जन्म दे लथे, जब सत्य का ज्ञान कराने वाला सतगुरु मिल जाता है तो जन्म जन्म के अपने दुर्ग के संस्कार के जो बुनी हुई मैली चदरिया है, जो ताना बुनी करा नेट बांध कर आप ही फंस मर रहे हैं। जैसे कुसवारी जाला बनाती आप फंस मरती, रेशम का कीड़ा एक रतल रेशम के कीड़े उत्पन्न होते उस समय 7 लाख होते, और 6 सप्ताह में 9,500 रतल बन जाते, अर्थात उनकी 9,500% वृद्धि हो जाती। लेकिन उनकी वो वृद्धि क्या है, उन्हीं का विनाश है। ऐसे आदमी ये वस्तु वो वस्तु पाकर अपने को बड़ा मानता है, लेकिन अपनी शांति का, अपने ज्ञान का, अपने आनंद का, अपने माधुर्य का खुद ही विनाश कर लेता है। मुसोलिनी ने अरबों खरबों रुपए इकट्ठे कर लिए और इतना अशांत हुआ कि सुख नहीं, अपनी पत्नी से, औरों की, अपने देश की लैलाओं से लगा, सुख नहीं। आखिर स्विट्जरलैंड की प्रेस ही लाया, तभी भी दुखी। और जब मुसोलिनी को कम्युनिस्टों ने मार भगाया तो ट्रक में रातों रात जा रहा है, अरबों खरबों रुपए की संपत्ति और प्रेसी को लेकर ट्रक में भागे जा रहा है स्विट्जरलैंड के तरफ। रास्ते में गोली लग गई, शत्रुओं ने पहचान लिया। अरबों खरबों की संपत्ति अभी तक गायब है, मुसोलिन का प्रेत आत्मा न जाने कहां लेकर भागा। 54 वर्ष हो गए, वो संपत्ति का एक तिनखा भी नहीं मिला, एक रुपया भी नहीं मिला। ऐसे आदमी अपने अपने दुर्ग में, हाय संपत्ति मिले तो मैं सुखी हो जाऊं, सत्ता मिले तो मैं सुखी हो जाऊं, सौंदर्य मिले तो मैं सुखी हो जाऊं, शत्रु की टांग टूटे तो मैं सुखी हो जाऊं, मित्र मेरे से चिपका रहे तो सुखी हो जाऊं, लवर मेरे को लवर लवरी की शादी हो जाए तो सुखी हो जाऊं, अब डाइवर्स हो जाए तो सुखी हो जाऊं, ये सब अपने अपने बेवकूफी के दुर्ग हैं। ये सब कर करा के भी उन लोगों को हमने दुखी देखा, मुसोलिनी दुखी, धनाढ्य लोगों को हमने दुखी देखा, निर्धनों को दुखी देखा, पठितों को हमने दुखी देखा और अनपढ़ों को भी हमने दुखी देखा, धर्मात्मा कहलाने वाले धर्मात्मा को भी हमने दुखी देखा और कहलाने वाले दुरात्मा को भी हमने दुखी देखा। जब तक वेद का वचन ये हम नहीं सार्थक अपने जीवन में करते, अपने अपने दुर्ग से तर जाए, अपनी अपनी कपोल कल्पित सुख की जो निगाह है उससे हम बाहर आ जाए। सर्वस्तरतु दुर्गाणी सर्वो भद्राणी पश्यन्तु, अपने अपने दुर्ग से, अपने अपने बेवकूफी के खड्डे से, कुपमंडुकता से बाहर आए। विवेकानंद बताया करते थे कि कहीं देव योग से दरिया का मेढक कुएं में पहुंच गया तो कुएं का मेढक पूछता कि भाई तू कहां से आया। दरियाई मेढक ने कहा कि भाई मैं दरिया से आया, दरिया से, समुद्र से आया। कुप मंडुक छलांग मारता है, बोले तेरा समुद्र इतना बड़ा है। बोले नहीं भैया, बहुत बड़ा है। उसने दूसरी छलांग मारी, बोले इससे बड़ा तो नहीं हो सकता। बोले बहुत बड़ा है। अब कुप मंडुक ने सांस फुलाते हुए एक छोर से दूसरे छोर जोरों की छलांग मारी, बोले इससे बड़ा तो तेरा समुद्र, समुद्र का बाप कभी नहीं हो सकता है। अब दरिया का मेढक कैसे बताए कि दरिया कितना बड़ा है। जब कुप मंडुक अपने कुएं को ही सर्वस्व मानता है तो उसको दरिया की खबर कैसे सुनाए। ऐसे जीव अपने ही छोटी मोटी बनी हुई दुनिया, छोटी मोटी बनी हुई कल्पनाओं को ही सर्वस्व मानता है तो सर्वस्व का सुख, सर्वस्व का ज्ञान, सर्वस्व का आनंद, सर्वस्व का माधुर्य कैसे पाएगा। और जब तक वो माधुर्य नहीं पाता तब तक कितना भी पा लेता है भीतर से कंगाल बना रहता है, कितना भी देख लेता है फिर भी भीतर से अज्ञानी बना रहता है, कितना भी सुन लेता है फिर भी भीतर से सुनना उसको बाकी रह जाता है, और कितना भी जन्म ले लेता है फिर भी उसका जन्म ना बाकी रह लेता है, और कितनी बार भी वो मरता है फिर भी बेचारे अभागे की मौत का अंत नहीं आता, क्योंकि अपने दुर्ग से हम लोग नहीं निकल पाते। सर्वस्तरतु दुर्गाणी सर्वो भद्राणी पश्यतु, हम सब मंगलमय देखे। मंगलमय वो है जो पहले था, अभी है, बाद में रहेगा। आद सत जुगात सत है भी सत, तो उस सत को देखने के लिए सत बुद्धि चाहिए। बनिया बुद्धि से सत्य नहीं दिखेगा, ऑफिसर बुद्धि से, वकील बुद्धि से सत्य नहीं दिखेगा, महंत बुद्धि से सत्य नहीं दिखेगा, सेवक बुद्धि से सत्य नहीं दिखेगा, सत बुद्धि से सत दिखेगा। सर्वस्तरतु दुर्गाणी सर्वो भद्राणी पश्यतु, सर्व सद्बुद्धि माप्नोतु, हम सबको सद्बुद्धि प्राप्त हो। सर्व सर्वस्तु नंदतु, हम सबको एक दूसरे को सहाय करें उस सत्य को पाने के लिए, सत्य सुख को जानने के लिए। वेद का ये मंत्र आत्मसात करने जैसा है। अगर वो सद्बुद्धि प्राप्त करने के लिए आप प्रयत्न करते तो बड़ा आसान है, लेकिन आप उस सद्बुद्धि पाने का प्रयत्न न करके और कुछ पाने का प्रयत्न करते हैं तो सुखी होना असंभव है। पूर्ण सुखी होना पूर्ण जीवन की मांग है। कोई ऐसा नहीं चाहता कि हम थोड़े से सुखी हों फिर दुखी हों, ऐसा कोई नहीं चाहता। थोड़े दिन हम मजे में रहे बाद में हमें मुसीबतें मिले, ऐसा कोई नहीं चाहता। तो पूर्ण जीवन की मांग हमारी तभी पूर्ण होगी जब हम पूर्ण के तरफ कदम आगे रखेंगे और अपूर्ण दुर्ग से तर जाएंगे, उस कूप मंडुकता से बाहर आएंगे। सितारों से जहां कुछ और भी है, इश्क के इम्तिहान कुछ और भी है। जितना आप जान लेते बस उतना ही नहीं है भैया, जितना आपने मान लिया कि इससे सुखी हो जाऊंगा उतना नहीं है, बहुत कुछ है। और फिर दूर नहीं है, पराया नहीं है, असंभव नहीं है। संसार से सदा सुखी रहना असंभव है और परमात्मा से सदा सुखी रहना सहज है, लेकिन उसको पाना जरा अटपटा है, झटपट समझ में नहीं आता है। एक बार समझ में आ जाए तो सारी खटपट मिट जाती है। बड़े आश्चर्य की बात है कि अप्राप्त वस्तु को प्राप्त कर हम सुखी रहना चाहते हैं, जो अप्राप्त संसार है उसको पाकर हम सुखी होने की अंधी दौड़ लगाते हैं, अप्राप्त जगत को प्राप्त मानकर ये जगत अप्राप्त है। जैसे ये गुलाब का फूल है, लगता है कि मुझे प्राप्त हो गया है, गुलाब का फूल प्राप्त हुआ है, लेकिन वास्तव देखा जाए अप्राप्त है, क्योंकि ये पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा, अभी भी नहीं के तरफ जा रहा है, केवल प्रतीति हो रही कि मुझे प्राप्त हो गया है, मुझे प्राप्त हो गया गुलाब का फूल, मुझे प्राप्त हो गया मकान, मुझे प्राप्त हो गया दुकान, मुझे प्राप्त हो गया बेटा बिटवा ये वो, लेकिन ये पहले था नहीं, बाद में रहेगा नहीं और अभी भी नहीं के तरफ जा रहा है। कितना भी लवर लवरी एक दूसरे को प्राप्त कर लें, लेकिन फिर बाहें खुल जाएगी, चलो थके हैं तुम सो जाओ हम सो जाए। जो पहले नहीं था बाद में नहीं रहेगा, वो मिला है तभी भी नहीं के तरफ ही जाता है, और जो पहले था अभी है बाद में रहेगा, जो सदा प्राप्त है कभी वियोग नहीं होता, उसके तरफ से हमारी अल्पमुद्धि अल्पमति बेपरवाह है, और जो पहले नहीं था बाद में नहीं रहेगा उसको पाने के लिए हमारी बुद्धि लालायित हो रही है। इसी ये मैन मुख्य गलती का ही कारण है कि सब कुछ करते धरते भी हम दुखी के दुखी रहते हैं। मनुष्य फरियाद करता हुआ रोता हुआ जन्मता है, फरियाद करता हुआ जीता है और फिर निराश होकर मर जाता है, क्योंकि उसको सतबुद्धि प्राप्त नहीं हुई। बुद्धि तो वकीलों के पास, न्यायाधीशों के पास, तर्कवादियों के पास बुद्धि तो है, ऐसा नहीं कि हम लोग बुद्धू हैं, सब बुद्धि तो है, लेकिन बुद्धि ऐसी हो रितम भरा प्रज्ञा, रित को पाने वाली, सत्य को पाने वाली मति प्राप्त हो जाए। सत्य मौजूद है, सत्य को लाया नहीं जाएगा, सत्य तो मौजूद है, लेकिन हमारी बालकानी बुद्धि है, बचकानी बुद्धि है। जैसे हम बच्चे होते ने तो फिर खेलते हैं खिलौनों से, उस समय है सिगरेट के पाकिट, पुरानी टिकटें, खिलौने और तो क्या, मोरपिंग पंख, ये चीजें इकट्ठी करते हैं, समझते कि हमारी सौगात है, ये हमारी प्रॉपर्टी है। जब हम बड़े हो जाते, बुद्धि थोड़ी विकसित होती, तो वो सारा कचरा भाइयों को, बच्चे को, अपने छोटों को दे देते। वो समझते क्या, ताऊ जी बहुत अच्छे हैं, भाई जी बहुत अच्छे हैं, फलाने बहुत अच्छे, मेरे को सब दे दिया। वो आपके लिए वो सब तुच्छ होता है, उसके लिए वो सब सर्वस्व हो जाता है। जब वो बड़ा होता है तो फिर और छोटों के लिए वो सर्वस्व हो जाता है, उसके लिए तुच्छ हो जाता है। ऐसे सारा संसार मोर के पिंच और पुरानी टिकटों जैसा है। जयराम जी की सद्बुद्धि प्राप्त होगी तो जब लदा आत्म हीरा जग हो गया सवा कसीरा, जब आत्म हीरे का ज्ञान मिला, आत्म हीरे का सुख मिला, आत्म हीरे की समझ आ गई, तो जगत की उपलब्धियां सवा कसीरा हो गया। लॉलीपॉप चॉकलेट गोली चिगम देखकर लपक पड़ते थे हम, पास में हीरे पड़े थे, मोती पड़े थे, माणिक पड़े थे, उनको चक्कर फेंक दिया बेकार है, लेकिन बिस्किट में लपक पड़े, लॉलीपॉप में लपक पड़े, लेकिन अभी हमारे सामने कोई लॉलीपॉप रख दे 10-50-25 बिस्किट के पैकेट ही रख दे और 10-5 हीरे जवाहरात को रख दे तो हम हीरे जवाहरात का आदर करेंगे और लॉलीपॉप और बिस्कुट को भाई तुम ही ले जाओ कोई बात नहीं, क्योंकि हम जानते हैं मूल्य क्या है। ऐसे ये जगत की उपलब्धियों का मूल्य है लॉलीपॉप चॉकलेट और बिस्किट जैसा। तुम खाओ तभी भी खाद बन जाएगा, नहीं तो रखे रखे वे सब खाद के तरफ ही जा रहे हैं। कितना भी बिस्किट का पैकिंग करो, 1-2 साल में देखो तो उसकी क्या हालत होती है। तो ये जगत की कितनी भी वस्तुओं को पा पा कर थाम थाम के रखो, ये पहले थी नहीं, बाद में रहेगी नहीं, अभी भी नहीं के तरफ जा रही है। लेकिन तुम्हारा परमेश्वर, तुम वास्तव में तुम, तुम्हारा मैं पहले था, अभी है, बाद में रहेगा, उसको पाने के लिए, उसको जानने के लिए सतगुरुओं का सानिध्य मिले और सत्य साधना की कला मिल जाए तो हमारी बुद्धि सद्बुद्धि हो जाए तो सत्य का साक्षात्कार हो जाए। वरना भगवान कृष्ण मिल जाए, मुसलमानों को मोहम्मद मिल जाए, रसूल मिल जाए, हिंदुओं को कृष्ण मिल जाए, राम मिल जाए, ईसाइयों को जीसस मिल जाए, फिर भी रोना कोसना चिचकना दूर नहीं होगा। जीसस क्रॉस पे चढ़ रहे थे, हजारों आदमियों ने तालियां बजाई कि अच्छा हुआ इसको तो क्रॉस लगना ही चाहिए। जीसस का अब भजन करो, भगवान जीसस है, आ जाएंगे, जब थे तब क्या हो गया। जयराम जी की पोटिस पायलट के हाजिरी में, राजपाल की हाजिरी में जीसस को खिले लग रहे थे, खून की धार बह रही थी और लोग उत्सव मना रहे थे। अभी ईसु आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा। श्री कृष्ण थे, जिनको कृष्ण के माधुर्य का आदर था, वे तो कृष्ण को देखकर आनंद लेते थे, लेकिन दुर्योधन के आगे कृष्ण थे तो क्या हो गया, शाकुनी के आगे कृष्ण थे तो क्या हो गया। श्री कृष्ण ने शाकुनी के, दुर्योधन के कंधे पे हाथ रखा, बोल दुर्योधन अब क्या ख्याल है, युद्ध की लड़ाइयां तैयारियां हो रही है, अभी भी सोच सकते हो। बोले युद्ध तो वीरों का काम है, हम युद्ध करेंगे, तू क्या करेगा, मायावी आदमी हो। अब कृष्ण को मायावी आदमी करके अवहेलना करने वाले दुर्योधन जैसे उस वक्त भी थे। जब तक सद्बुद्धि नहीं होती तो सत्य स्वरूप कृष्ण तुम्हारे कंधे पे हाथ रखे तो क्या हो गया। राम के दीदार करती है सुरपंखा और मांग करती है कि सेक्स की, काम की मांग करती है राम से, हद हो गई, सद्बुद्धि नहीं है ना। धोबी तो था, राम के दर्शन करता था, लेकिन सद्बुद्धि नहीं तो राम पर कलंक लगाया जा रहा है। कल मुझे किसी ने बताया कि बापू ये जो ब्लैकमेल करने वाली वो वीकली अखबारें हैं, वो बोलती है कि इस ताल वालों ने चोरी की लाइट ली। बाबा जी हमारे पास तो मीटर है, लेकिन ये ऐसा लिखते हैं कि इनको शर्म नहीं आती। मैं क्या शर्म आती तो लिखते कैसे, और ब्लैकमेलिंग कैसे चलता उनका। जयराम जी की तो ऐसा, ऐसे लोगों के पास मति है कि लाखों लोग जिस समिति की सेवा से प्रसन्न है, ऐसे समिति के भाइयों पर भी कुछ का कुछ कलम से लिख देने में उनको संकोच नहीं होता। क्यों नहीं होता कि सद्बुद्धि नहीं है। जयराम जी की नारायण हरि, नारायण हरि, बोलो नारायण हरि, नारायण हरि। हमें सद्बुद्धि प्राप्त हो, सतबुद्धि से सुख पैदा होता है, जहां सुमति वहां संपत्ति नाना। ऐसा नहीं सतबुद्धि वाला कंगाल हो जाएगा, दुखी हो जाएगा, नहीं, दुखी तो वही होते हैं जिनके पास सतबुद्धि नहीं होती, अथवा जो सतबुद्धि का आदर नहीं करते वे परेशान होकर पछते रहते हैं। धन है फिर भी बेचारे दुखी हैं, सत्ता है फिर भी बेचारे अशांत है, सौंदर्य फिर भी बेचारे परेशान है। तो सौंदर्य का फल परेशानी नहीं है, सत्ता का फल परेशानी नहीं है, धन का फल परेशानी नहीं है, लेकिन सतबुद्धि होती तो उसका सदुपयोग करते। राजा भोज जैसे सरस्वती के उपासक थे, विद्वानों का आदर करने वाले थे, ऐसे लक्ष्मी भी उनके पास खूब रहती थी और लक्ष्मी का सदुपयोग और आदर करने वाले भी थे। मंत्री हमेशा सुकरता रहता कि राजा का इतना हाथ खुला है कि दान पुण्य और ये सदाचारी महापुरुषों की सेवा में उसमें उसमें लगाते रहते हैं, अब राजा को कैसे रोके टोके। राजा के सिंहासन के आगे उसने एक वाक्य लिख दिया, लक्ष्मी चंचल है, उसे संभाल रखना उचित है। भोज ने देखा कि मंत्री का हृदय सुकड़ रहा है, कहीं खजाने का तलिया ना आ जाए। भोज ने उसके नीचे दूसरा एक वाक्य लिखा, लक्ष्मी चंचल है तो सत्कर्म से ही सुरक्षित रहेगी, इसलिए सत्कर्म में लगाते रहना चाहिए। फिर मंत्री ने दूसरे दिन एक वाक्य और लिखा, चंचला है लेकिन इसकी आवश्यकता है, चंचल है इसकी आवश्यकता है, चंचला की आपत्काल के लिए इसका संग्रह करना चाहिए। भोज ने फिर चौथा वाक्य पूर्ण किया कि जब चंचला है तो इसका संग्रह भी तो हो, कितना भी संग्रह करो तभी भी जाएगी, तो जो सत्कर्म में लगाता है तो चंचला भी अचल होकर रहती है, इसलिए डरपोक नहीं होना चाहिए। लक्ष्मी धन वैभव रख रख कर उसके आगे नाग जैसा चौकीदार होकर मरने के लिए नहीं है, उसकी शोभा तो है उसका सदुपयोग करने में। माता पिता गुरुजन सतशास्त्र और सदाचार में सत्य को प्राप्त करने में लक्ष्मी का सदुपयोग होगा, नारायण को पाने में अगर लक्ष्मी का सदुपयोग होगा तो लक्ष्मी और नारायण दोनों तुम्हारे इर्द गिर्द रहेंगे, अगर भोग में होगा तो फिर गड़बड़ होती है भाइया। जो लोग कहते हैं कि संग्रह करना चाहिए करना चाहिए, वे लोग जरा कृपा करके ध्यान से सुन लें। 1923 में अमेरिका के धनाढ्य व्यक्तियों की एक लिस्ट बनाई गई कि बड़े बड़े धनाढ्य कौन कौन है। कोई कैश में भारतीय धनाढ्य था, एक का था उसके इशारे से मार्केट अदल बदल हो जाते थे, वो मार्केट में ब्याज पे पैसे दे तो मार्केट डाउन हो जाए, मस्तों का पैसा खींचे तो है सब हो जाए। दूसरा वो आदमी था जो गेहूं और बटाखे का सट्टा मार्केट का सर्वे सर्वा था। तीसरा वो धनाढ्य सेठ था कि तार टपाल टेलीग्राम वहां प्राइवेट कंपनियों का वो मालिक था। ऐसे एक एक धनाढ्य व्यक्तियों की लिस्ट बनाई और 25 साल के बाद उन धनाढ़ियों की सर्वे की, तो जो सट्टे मार्केट का सर्वे हुआ था ऐसा सट्टा लगाया कि वो इस समय जेल में है। 1947 में 25 साल के बाद उसको जेल में पाया गया कंगाल हालत में, कोई हार्ट अटैक का शिकार बनकर मर गया है, तो किसी के छोरों ने कैसीनो में जुगाड़ के अड्डे में पैसे गंवा दिए, तो किसी को पैरालाइज है, जितना संभालने के पीछे दिन रात लगे थे इस असत को मिथ्या को, उतना अगर सत्य स्वरूप आत्मा को संभालते तो वो भी बुद्ध महावीर और कबीर और नानक की नाई पूजे जाते। रॉकफेलर नाम का लड़का बड़ा उत्साही जवान था, 18 साल की उम्र में उसने मिलियन डॉलर कमा लिए, मिलियन डॉलर माना आज के 3.5 करोड़ रुपए। 21 वर्ष की उम्र में तो उसने कई मिलियन डॉलर कमा लिया, 1 मिलियन इक्वल 3.5 करोड़ रुपया आज के जमाने, तो उसने 21 साल में कई मिलियन डॉलर कमा लिए और स्टैंडर्ड वैक्यूम कंपनी भी खरीद लिए, उसका मालिक बन गया। और भी भूख बढ़ी, लोग समझते धन मिलने से आदमी धनवान होता है, लेकिन सही तो ये पाया गया कि जितना धन अधिक मिलता है उतना भीतर से आदमी कंगाल हो जाता है। पहले तो 2000 से तृप्ति हो जाती थी, अब 2 लाख से भी नहीं होती, अब 10 लाख से भी नहीं होती, अब तो 10 करोड़ चाहिए। जो धन मिलता है त्यों भीतर से वासना बढ़ती जाती, कंगला होता जाता है अगर सद्बुद्धि नहीं है तो। रॉकफेलर उसी कंगालों की परंपरा में चल पड़ा, उत्साही जुआन था, अक्कल वाला था, पुरुषार्थी था, लेकिन सद्बुद्धि को पीठ देकर असत माया को पाने के लिए लग पड़ा। वो असत माया तो ढेर लगा दी, लेकिन असत माया ने शरीर को भी असत की खाई में धकेल दिया, बीमार हो गया, रात को नींद नहीं और दिन को खाना नहीं पचता, क्योंकि चिंता, इतना सारा पैसा इधर लेना इधर देना, उधर टाइम से खा नहीं सकते, टाइम से सो नहीं सकते, टाइम से हंस नहीं सकते, नहा नहीं सकते, इतना असत के पीछे अंधा हो गया कि महाराज उसका स्वास्थ्य देखने वाले डॉक्टरों ने कहा कि मिस्टर रॉकफेलर अब तुम्हारी 52 वर्ष की उम्र हुई है, बहुत बहुत तो आप 4 से 6 महीने ज्यादा खींच सकते हैं, उससे ज्यादा आप जीवित नहीं रहेंगे किसी भी कीमत पर। रॉकफेलर को एक धक्का लगा, अब क्या करूं, कोई समझदार थे स्वामी विवेकानंद के सत्संग से प्रभावित हुए, स्वामी विवेकानंद के पास ले गए या उन्हीं के शिष्य के पास ले गए, जो उन्होंने सलाह दी कि तुम हाय हाय करके इकट्ठा कर रहे हो, इतना आकर्षण कर रहे हो, अब धन को संभालने की चिंता, और तुम कितना संभालोगे। एक लोभी आदमी साधु बन गया था, संन्यास ले लिया था, और उस लोभी को संन्यास लेने के बाद किसी ने दो चार अशर्फियां रखी भेंट में। अब वो चिपका, लोभ तो घर में था, अब कपड़े बदले, दिल तो वही का वही, सद्बुद्धि नहीं, तो थोड़ा बीमार हुआ, सोचा कि मेरी अशर्फी कोई उठाना ले जाए, मेरी अशर्फी तो मेरी है ना। उसने हलवा बनाया, सीरा बनाया, और एक एक कोर में एक एक अशर्फी डाल के निगल गया, ताकि फिक्स डिपॉजिट वॉल्ट हो जाए पेट में। मरना था उसके पहले वो मर गया, और अशर्फियां इसी धरती पे पड़ी रही। कितना संभालोगे, बैंक में रखो सेफ सेफ, लेकिन बैंक भी कब तक सेफ रखेगी? तुम्हारा शरीर सेफ नहीं तो बैंक में कब तक सेफ रहेगा? सोने अथवा हीरे निगल के रखो तभी भी कब तक सेफ रहेगा? जो संसार की चीजें हो तो संसार में बिखरेगी, और जो आत्मा है वो परमात्मा को मिला दो, ऐसी सद्बुद्धि प्राप्त करा लो, ऐसा कोई सत्संग मिल जाए, ऐसी कोई सही समझ मिल जाए। आदमी धन के अभाव में इतने दुखी नहीं मिलेंगे, सत्ता के अभाव में इतने लोग दुखी नहीं है। आप दुखी क्यों है? सत्ता नहीं है इसलिए दुखी है, मैं नहीं मानता। धन नहीं है इसलिए लोग दुखी है, मैं नहीं मानता। अच्छा बढ़िया मकान नहीं इसलिए लोग दुखी है, मैं नहीं मानता। अच्छी बढ़िया समझ नहीं है इसलिए हम लोग सबके सब दुखी हैं। नहीं तो सुखदेव जी के पास तो पर्ण कुटीर थी, सुखी थे, पूर्ण सुखी थे, चक्रवर्ती सम्राट उनके चरणों में सुख पाने को जाते। लोग डिंग हाँकते कि ये उद्योग खोलेंगे दुख मिट जाएगा, ये कर देंगे वो मिट जाएगा, प्रॉब्लम वो मिट जाएगा, लेकिन दिन दोना रात चौना मानव जात के लिए प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम बढ़ते चले जा रहे। मनुष्य को सत्बुद्धि प्राप्त हो, मनुष्य को सच्चा सुख मिले, बिना मेहनत बिना मजूरी और बिना खतरे का सुख मिले, ऐसा साधन भजन की आवश्यकता है, ऐसे ज्ञान ध्यान की भी आवश्यकता है। भौतिक जगत में धन वैभव सुविधा संपदा है, तो आध्यात्मिक जगत में शांति माधुर्य मुक्ति और सदुपयोग करने की कला है। अगर आध्यात्मिक जगत को पीठ देता है तो भौतिक जगत का सुख दुख रूप हो जाता है, सामर्थ्य मुसीबत रूप हो जाता है। वही जो सुख के साधन थे वही चिंता और टेंशन को जन्म दे देते हैं। चिंता और टेंशन का शिकार बना हुआ रॉकफेलर जब विवेकानंद के उस प्रसाद को पाता है, उसने सोचने का तरीका बदल दिया, सतबुद्धि आंशिक रूप में ले ली। जो मेरे लिए धन कमाता था, मेरे को और चाहिए, अब सोचा कि इतना है क्या करूँगा, मेरा धन औरों के काम आए, और चाहिए के बदले औरों के काम आए। ये विचार करो तो तुम्हारी चिंता और भय निर्भयता और निश्चिंतता में बदल जाएगा। रॉकफेलर ने अपने धन का बहुजन हिताय बहुजन सुखाय उपयोग करने का चालू कर दिया। अनिद्रा का रोग धीरे धीरे कम हो गया, चिंता धीरे धीरे कम हो गई, यश और आनंद बढ़ने लगा, दान देने से औदार्य सुख की वृत्ति उभरने लगी, स्वास्थ्य पर अच्छी इफेक्ट पड़ी। समाज की उन्नति के लिए सत्कर्म करते करते महाराज रॉकफेलर लिखता है कि मैं 52-53 साल की उम्र में जो मरने वाला था, वो रॉकफेलर 93 साल तक जिंदा है। ये जीवन जीने का ढंग जिन्होंने दिया उनको धन्यवाद है। जो धन के ढगले देश परदेश में करके और अपने को बड़ा आदमी मान रहे हैं, ऐसे बड़े लोगों को भगवान ये रॉकफेलर की आइडिया दे दे तो कितना अच्छा होगा। महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री न जाने कितने लाखों करोड़ों रुपए स्विट्जरलैंड की बैंक में रखे, और जिसके थ्रू रखे उसको बोला मेरे कितने पैसे और लाओ चाहिए, तो बोले जैसे आए वैसे गए, बोले क्या है हैं हैं करके उसी के जर्क में हार्ट अटैक में मर गया। अब वो पैसे तो हमारे देश के स्विट्जरलैंड में सट रहे या कोई खा गए। तो अक्ल तो थी, लेकिन अक्ल के साथ सतबुद्धि वाली अक्ल होती तो ये पैसों का शोषण करके परदेश की बैंकों में नहीं सड़ने को ले जाते। हजारों लोग जो बेचारे हैं, लाचार हैं, मोहताज हैं, दिन भर काम करते और 30 रुपए की नौकरी नहीं मिल रही है, एक आदमी बेचारा काम करे और 5 आदमी खाए, 2 टाइम उतना भोजन नहीं मिल रहा है। अगर ईश्वर सत्य है तो ईश्वर की संतान के नाते उनके लिए कुछ प्रवृत्ति खोल देते, उनके हित में कुछ कर देते तो उसका भी आनंद आता और ईश्वर के दरबार में भी आनंद रहता और देश भी उन्नत होता महाराज। ये जो लोभ है, मोह है, मद है, मात्सर्य है, अहंकार है, ये असत वस्तुओं को सत्य मानकर प्रीति करने से सारे दुर्गुण पैदा होते। तो आश्चर्य की बात यह है कि अप्राप्त वस्तुओं को जो कभी थम नहीं सकती, उसको थामते थामते हम काम को, क्रोध को, अभाव को, मृत्यु को, कष्टों को बुला रहे, फिर भी सावधान नहीं होते। पतंगिया बार बार जाता है दिए में, क्या जल मरता है, मजा लेने के बहाने तेरा एक पंख जला, आप सावधान हो, थोड़ा रेस्ट लेके उड़ता है फिर जलने को जाता है। वो नहीं सोचता कि मैं जलने को जा रहा हूं, वो तो समझता कि यही सुख है, मजा है। जैसे पतंगिया बेवकूफी से बार बार दिए की लौ में जाता है मजा लेने के लिए, बदले में सजा मिलती है, ऐसे ही असतमति बार बार संसार के विकारों में सुख लेने जाता है और उतना ही दिल, दिमाग, मन और मति असत से कमजोर हो जाती है। इसलिए कृपानाथ कृपा करिए, आपको सुख चाहिए तो सुख स्वरूप हरि के नाम का जप करिए, ध्यान करिए। और थोड़ा कठिन लगेगा आरंभ में, बाद में अंतर आत्मा का जब सुख मिलेगा तो बाहर के सुख के साधन से तुम प्रभावित नहीं होगे, उसका सदुपयोग करोगे और आत्म सत्य में आप आराम करोगे, आपको ऐहिक जगत भी नंदन वन बन जाएगा और परमात्मा का मुलाकात हो जाएगा, दोनों हाथ में लड्डू। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, उसे एक आत्मा का आदर करो तो सब सद जाएगा। एक आत्मा चैतन्य का अनादर करके मिथ्या शरीर और वस्तुओं का आदर करोगे तो महाराज वो भी गया, वो भी गया। वेद कहता है सर्वस्तर तु दुर्गाणी, केवल अकेला मैं तुम नहीं, सब हमारे लोग अपने अपने कल्पित खड्डों से, कल्पित दुर्गों से तर जाए। सर्वो भद्राणी पश्यतु, हम सबको मंगलमय दिखे, सार रूप वस्तु दिखे। सर्व सद्बुद्धि मापनोतु, हम सबको सद्बुद्धि प्राप्त हो। सर्व सर्वस्तु नंदतु, हम सब एक दूसरे को मदद रूप हो। टांग खींच खींच के तो हमारी शक्तियां एक दूसरे में लड़ मरी, खत्म हो गई। विद्रोह नहीं, अति विरोध नहीं, क्रांति नहीं, संक्रांति, सम्यक क्रांति लानी चाहिए। क्रांति तो तोड़फोड़ करती है और संक्रांति जोड़कर उन्नति लाती है। हो सकता है कि कभी सासू की गलती हो, लेकिन तू सासू की जगह पे होती और तेरी मति ऐसी होती है तो तू क्या करती, ऐसा अपने मन को बहुरानी पूछ। हो सकता है कि बहू की गलती हो, लेकिन बहू की जगह पर मैं होती और मेरी मति ऐसी होती तो मैं क्या करती, ऐसा समझकर पहले सतबुद्धि के अनुसार अपने को कंट्रोल में करो, फिर एक दूसरे को प्रेम से समझाओ तो घर में आनंद रहेगा, कलह की जगह पर सत्संग प्रकट हो जाएगा। ऐसे भाई मित्र कुटुंब कम्बली। असत बुद्धि क्या करती है, अपना तो कंकड़ जितना गुण होता है तो पहाड़ जितना लगता है और अपना पहाड़ जितना अवगुण होता है तो कंकड़ जैसा लगता है। बुद्धू हलवाई बैठे थे, बिल्ली दौड़ी चूहे के पीछे तो चूहा भागा इधर उधर, बिल्ली के दौड़ धूप से बंडल पड़ा था कागजात का, कागजों का छत पर वो गिरा, तो उसमें से 6 मासिक सप्लीमेंट्रियां परीक्षा के। बुद्धू हलवाई ने एक पेपर उठाया, देखा गणित में 4 मार्क, विज्ञान में 5, समाजशास्त्र में 2, फलाना में 1, फलाना में 0। आग बबूला हो गया, इतने में लड़का आ गया 2 बजे, पकड़ी फेंट, मूर्ख 2 मार्क, 4 मार्क, 5 मार्क, 0 मार्क, रोज 50 पैसे लेता, रोज 8 खर्चने को ले जाता, हलवा खाता, ये पेपर देता। बोले पापा ये तो पुराना पेपर है, आप पढ़ते थे ना, आप देखिए आपका नाम लिखा है, मेरा पेपर ऐसा नहीं है। पापा ने देखा था तेरे की, ये तो मैं पढ़ता था तब का है। बोले अच्छा अच्छा बेटा कोई बात नहीं है। अब वो जो बुद्धू पन्ना नालायकी पन्ना वो जो गुस्सा था वो कहाँ गया, दूसरे ने गलती की तो गुस्सा कितना उभरा, उतनी गलती अपनी है तो कहां चला गया गुस्सा। असत बुद्धि क्या है कि असत देह को, असत परिस्थितियों को और असत मैं को संभालती है और दूसरे को कोसती है, और सत बुद्धि दूसरे में जो सत्य है उसको भी देखती है और अपने में भी सत्य है उसको देखती है, बाकी का यथा योग्य तटस्थ होकर व्यवहार करती है। इसलिए जिनको सद्बुद्धि प्राप्त हुई है उनके घर में स्वर्गीय सुख रहता है, आनंद रहता है, माधुर्य रहता है। तुम कितने भी देवी देवताओं को अगरबत्ती करते रहो हमारी मना नहीं है, कितना भी मस्जिद चर्चों में जाते रहो हमारा इनकार नहीं है, लेकिन जब तक तुम हृदय मंदिर में जाने के लिए तैयार नहीं होगे, एक दूसरे के मंदिर को पहचानने के लिए तुम तैयार नहीं होगे तो तुम जाते रहो महाराज। नारायण हरि नारायण हरि। मंदिरों मस्जिदों चर्चों में जाने का फल यह है कि हृदय मंदिर में ले जाने वाले सत्संग में रुचि पैदा हो जाए तो मंदिर में जाना सफल हो गया। रामकृष्ण परमहंस मंदिर में जाते जाते काली के दर्शन भी करते थे, तब काली माँ ने कहा कि तोतापुरी गुरु से मंत्र दीक्षा ले ले। रामकृष्ण कहते कि माँ तुम्हारे दर्शन होते हैं तुम मेरे बुलाने पर आ जाती हो फिर भी मुझे गुरु करना बाकी। बोले बहुत जरूरी है माता, फिर तुम्हारे दर्शन का फल क्या? बोले मेरे दर्शन का और मेरे पूजन का फल ये है कि घर बैठे ब्रह्म ज्ञानी गुरु आए और तेरे को दीक्षा देने को राजी है, यही मेरे दर्शन का फल है। नहीं तो माँ नहीं है तो रो रहे, माँ आई तो हर्ष हुआ, फिर माँ चली गई तो फिर रोए, तो ये तो अपने दुर्ग में ही तुम पड़े रहे, अपने कल्पित जगत में ही पड़े रहे ना। मैं अकेला हूं, माँ 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 आ गई, काली माँ आई, हर्ष आनंद आया, लेकिन काली माँ जहां से आई तो फिर जाएगी तो माँ जिससे माँ है और बेटा जिससे बेटा है उस दोनों का आधार जो सत्य स्वरूप ईश्वर है उसका ज्ञान कराने वाला तोतापुरी गुरु की शरण जा। भगवान कृष्ण को देख रहा है अर्जुन, और अर्जुन कोई दुर्योधन जैसा दुष्ट व्यक्ति नहीं था, बुद्धिमान था, संयमी था, फिर भी अर्जुन भी कृष्ण का दीदार करने पर भी तो दुखी पाया गया, मोह के कारण दुखी था, मैं युद्ध कैसे करूंगा, ये भीष्म पितामह द्रोणाचार्य फलाना, अरे तू इनको मारता थोड़ी है, तो मरने वाले शरीर वैसे भी मरेंगे, लेकिन वो असत का सहयोग दे रहे तो उसको जरा ऑपरेशन करना पड़ेगा, मैं सन्यासी बन जाऊंगा, मोह के कारण उनको देखकर सन्यासी बनता है, वैराग्य के कारण बनता तो ठीक रहता, अभी मोह से तू सन्यासी बनेगा तो वहां भी जाके मोह करेगा, इसलिए तेरे लिए युद्ध करना जरूरी है। अब जिनको कृष्ण से सूख गए वो बोलते हैं देखो कृष्ण कैसे हैं, वो बेचारा युद्ध नहीं करता था और अपने साथियों के मरवाया कृष्ण ने स्वार्थ में आकर, तेरी खोपड़ी में स्वार्थ भरा है, तू अपने दुर्ग में बैठा है इसलिए कृष्ण तुझे ऐसे दिख रहे। आप ठीक जगह पर बैठकर देखिए तो आपको ठीक दिखेगा, आप कैमरा के जिस कोने से फोटो खींच रहे, जैसे कोने से जैसे एंगल से फोटो खींचते ऐसा फोटो आएगा। आप कैमरा को कैमरा की जगह रखिए और अपने ज्ञान को अपनी जगह रखिए तो ठीक कैमरामैन होंगे, लेकिन कैमरा के जिस एंगल से फोटो लिया वो आदमी वैसा ही आपको दिखेगा, वो आदमी वैसा नहीं है, तो कैमरा की करामत है। ऐसे तुम्हारी वृत्ति की करामत है कि ऐसा है वैसा है तैसा है, ये कौन बदलते रहते हैं, लेकिन बदलने वाला अबदल आत्मा है, अबदल आत्मा का जो ज्ञान है वो जीवन में बहुत जरूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारतः तव प्रसादात पराम शांति स्थानम प्राप्यसि शाश्वतम। इसलिए अर्जुन तू शरण में जा, सर्व भाव से जा, शरीर से जो कुछ कर्म करे उस सत्य स्वरूप परमात्मा को प्रसन्न करने से कर्म के लिए कर्म कर, मन से जो विचार करे उसी आत्मदेव को सत्य स्वरूप को संतुष्ट करने के लिए ही विचार कर, किसी की टांग खींचने के विचार मत कर, किसी में दोष आरोपण का विचार मत कर, हाँ उसके दोष निकले इसलिए भले बोल दिया हो, कोई छोटी मोटी ब्लैकमेल करने वाले वीकली के लिए भले बोल दिया, लेकिन दुश्मन की के भाव से नहीं बोले, उसका भला हो, ब्लैकमेल ना करे तो अच्छा है, लोगों के हृदय में अपने लिए धिक्कार पैदा ना करे तो अच्छा है। गांधी जी कहते हैं कोई आदमी दोषी है उसको आप दोषी ना बोले तो कोई पाप नहीं लगता, लेकिन निर्दोष पर जब आप ऐसे कलम चलाते तो आप पाप के भागी हो जाते। जयराम जी की, आपका तेज बल और आपकी अखबार की वैल्यू घट जाएगी। नारायण हरि नारायण हरि। और बड़ी कमजोरी है कि बनिया लोग और सेठ लोग और ऑफिसर लोग ऐसे ब्लैकमेलरों से डरते रहते, यार क्या पता कुछ लिख दे फिर इंक्वायरी हो जाए। अरे एक दूसरे से डरते तभी वो ब्लैकमेलर आ जाते, जहाँ डरपोक होते ना वहाँ ऐसे चीटिंग करने वालों को मौका मिल जाता है। एक आया चीटर संत बाबा के पास, महाराज 200-400 रुपया दे दो हमको डोनेशन। बोले भैया डोनेशन तो तू क्या कुछ काम कर रहा है बड़ा, तो हम दे दें 200-400 क्या ज़्यादा भी दिला सकते, तुम क्या करोगे? बोले महाराज मैं मेरी वीकली निकलती है वीकली, तो आप मेरे को कुछ दे दो पैसे, तो तू क्या करेगा? बोले महाराज क्या करेगा ये नहीं सोचो, हम तो हैं हमारे हाथ में कलम है, तुम इतने प्रसिद्ध आदमी हो, दो शब्द हम ऐसे वैसे लिख देंगे तो तुम्हारे लिए भारी पड़ जाएगा। महाराज ने कहा फिर तो तू 2 नहीं 50 लिख, अब तो 500-200 नहीं 2 पैसे भी नहीं दूंगा। ये ब्लैकमेलिंग से डरपोक सेठ डरे, डरपोक ऑफिसर डरे, हम भी डरे, तो फिर कैसे काम चलेगा? तू लिख खूब लिख। उसने कीचड़ उछाला, लेकिन उसका कीचड़ उछालने के वक्त थोड़ा सा लगा, श्रद्धा अश्रद्धा लोगों की हुई, लेकिन पैसे देकर जो किसी संत के लिए अथवा पैसे न मिले और संत के लिए कीचड़ उछाले, उनके जीवन में ही कीचड़ कीचड़ हो जाता है। संत की तो चमक दिन दोनी और रात चौनी हो जाती। नारायण हरि। समझने वाले समझ रहे सब ना समझे। नारायण हरि बोलो ना तुम। नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि। तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भावता भारता तत्प्रसादात पराम शांति स्थानम प्राप्यसि शाश्वतम। तुझे शाश्वत स्थान प्राप्त होगा, शाश्वत सुख प्राप्त होगा, शाश्वत ज्ञान प्राप्त होगा, शाश्वत माधुर्य प्राप्त होगा, शाश्वत आनंद प्राप्त होगा। फिर सत्वगुण का हर्ष जनित सुख तुझे प्रभावित नहीं करेगा, रजोगुण का वासना युक्त सुख तुझे प्रभावित नहीं करेगा, और तमोगुणी आलस्य जन्य सुख दुख तुझे प्रभावित नहीं करेगा। जैसे थंबे घर के थंबे के आगे दिन रात सब एक सरीखे हैं, ऐसे जीवन मुक्त के आगे सुख दुख और मान अपमान सब एक सरीखे हैं, वो अपने आत्मा में तृप्त रहता है। जैसे सूर्य को रात्रि का प्रभाव नहीं चिपकता है, जैसे सूर्य को अंधेरा नहीं चिपकता है, जैसे दरिया को उदय नहीं लगती है, जयराम जी की, ऐसे ही तुम्हारे चित्त में दुख की चिंता की टेंशन की घुन कभी नहीं लगेगी। तुम्हारा चित्त रूपी दरिया हमेशा आनंद में लहराता रहेगा। पूरे हैं वे मर्द जो हर हाल में खुश हैं, मिला अगर माल तो उस माल में खुश हैं, हो गए बेहाल तो उसी हाल में खुश हैं, कभी ओढ़े टाट तो कभी बाट में खुश हैं। पूरे हैं वे मर्द जो हर हाल में खुश हैं। असली जीवन जियो। तुमने मनुष्य जन्म लिया पिस मरने के लिए लिया, चिंता टेंशन में तप मरने के लिए मनुष्य जन्म लिया, हाय रे हाय, इसको सुकड़ो उसको सुकड़ो, इसके आगे बांछे खोलो उसके आगे, अरे हृदय की खुशी हो तो हंसो, नहीं तो साहेब सर 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 करके कब तक रगड़ते रहोगे अपने आप? तुम अपना सत्य का अवलंबन लो, सुबह उठकर उस सच्चे सरों के सर का सहारा ले लो, फिर सारे सर और पैर तुम्हारे दीदार करके अपना भाग्य बना लेंगे। तुम फिक्र क्यों करते हो? एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। तुम भीतर वाले से बिगाड़ के बाहर के सरों को कितना भी राजी रखो, वो सर ऑर्डर करते रहेंगे और रूठते भी रहेंगे। तुम भीतर वाले से मेल कर लो, फिर वो सर और पैर दोनों तुम्हारे पीछे पड़ेंगे। जय राम जी की। नारायण हरि नारायण बोलो ना तुम, कंजूसी ना करो। नारायण हरि नारायण हरि। राम तीर्थ कहते थे कि बड़े शर्म की बात है कि मनुष्य जन्म पाकर भी दुखी चिंतित भयभीत और शोकातुर रहे। दुखी चिंतित भयभीत और शोकातुर तो वो रहे जो निगुरे हैं, जिनके माई बाप मर गए। तुम्हारा माई बाप तो तुम्हारा चैतन्य परमात्मा राम है और गुरुओं का ज्ञान तुम्हारे साथ है, फिर भी तुम फिकर में तप रहे हो। नहीं नहीं, तुम ऐसे कर्म करो कि तुम्हारा अंतरात्मा प्रसन्न हो। तुम काम करते उसके पहले उत्साह होता है और काम करते समय पुरुषार्थ होता है, तो काम जब पूरा होता है तो उसका फल हृदय में प्रकट होता है। लड्डू फल नहीं है, कुर्सी फल नहीं है, आपके हृदय में शांति आनंद माधुर्य और निर्भयता फलित हुई कि ग्लानी अशांति दुख चिंता फलित हुई। अगर दुख चिंता और ग्लानी फलित हुई तो आपने असत कर्म किया है, आपने विवेक के विरुद्ध कर्म किया है, अंतर्यामी परमात्मा के विरुद्ध कर्म किया है। इसलिए कर्म पूरा होते ही आपको थकान ग्लानी दुख अशांति उद्वेग मिला फल। अगर आपने कर्म किया तो आपको शांति आनंद माधुर्य प्रसन्नता और अंतरात्मा का धन्यवाद मिला। तो आपने वो कर्म किया परमात्मा के संतोष के लिए, आप सतबुद्धि के रास्ते लग गए। आप अपने गुरु आप हो सकते हैं, आपके कर्मों के ज्ञाता आप हो सकते हैं। जो भी कर्म करो शरीर से, उस अंतर आत्मा परमात्मा का संतोष पाने के लिए करो। मन से जो सोचो उस अंतर्यामी के अनुकूल सोचो, और बुद्धि से जो निर्णय करो वो ईश्वर ने जैसा बताया वैसा निर्णय करो। मकान मेरा, मैं मकान वाला, ये ईश्वर ने नहीं बताया कि तुम ऐसा बोलो। फैक्ट्री मेरी, मैं फैक्ट्री वाला, रुपया मेरा, मैं रुपये वाला, ये तो तुम्हारा व्यवहारिक ज्ञान है, कल्पित है। वो कल्पित को कल्पित समझो और बोलो तो हमारी मना नहीं है, लेकिन सच पूछो कि आप रुपये वाले, आप फैक्ट्री वाले, आप फलाने वाले, ये तो कल्पित है। असलियत तो यह कि आप ईश्वर वाले हैं और ईश्वर आपके वाला है, ये आपका शाश्वत है। फैक्ट्री तुम्हारी पहले नहीं थी और बाद में नहीं रहेंगे, चले जाओगे तो। रुपया पैसा ये सब तुम्हारा पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा और अभी भी नहीं के तरफ जा रहा है, लेकिन परमात्मा तुम्हारा पहले था, अभी है, बाद में रहेगा, उससे तुम प्रीति कर। बोले महाराज भगवान में प्रेम नहीं होता है। हम बताते हैं उसकी कुंजियां। मेले में किसी आदमी को देखकर एकाएक प्रेम नहीं होगा, एकाएक तुम गले में नहीं लगते हैं, लेकिन जिसके विषय में तुमने बार बार सुना है सोचा है वो आदमी मिल जाएगा। हाँ सारा मार, अरे यार लंदन में आजकल जी टीवी वाले लंदन में दिखा रहे हैं, खूब उन पर टेलीफोन के टेलीफोन धन्यवाद आ रहे हैं। गुजरात में कोई दिखा रहे तो कोई गुजरात की अखबारों को लोग धन्यवाद और टेलीफोन भेज रहे हैं। वो आज सुबह खबर आई कि गुजरात के संदेश अखबार वाला गदगद हो गया कि मुझे पता ही नहीं था कि हमारे अहमदाबाद में ऐसा बापू के इतने भक्त। बाबू बोलता है हफ्ते में 3 बार बड़े बड़े लेख दूंगा, फ्रंट पेज पे दूंगा। बाबू संदेश अखबार वाला तो बस फागुन भाई तो झूम गए हैं बापू, उनको तो ऐसा हो गया आज ऐसे टेलीफोन आए। तो जिसके विषय में सुना है रटा है वो अगर मिल जाता है तो बड़ा मजा आ जाता है। ऐसे भगवान के विषय में सुनो और भगवान के नाम को रटो तो वो भगवान का आनंद जब प्रकट होगा, और भगवान जब जरा सा निहारेंगे तो तुमको बहुत आनंद आएगा। वैसे तो रोज निहार रहे लेकिन तुम उनको जानते नहीं हो, रोज निहार रहे हैं, रोज तुमको कभी न कभी कुछ धन्यवाद भी देते हैं और कभी लखना लत भी करते होंगे। सिंधी साईयों का जो भूंडा है ना मल्टीपर्पज है, अगर गुस्से में और घृणा से दे दो तो गाली हो जाता है। लखना लत दई छोरा वठे गण भणा साऊ मुते तो मां की को न थियो है कथई धना भाड़िया। ये हो गई बड़ी गाली। और हे वठ मुआ तू तो मैं लुचड़ो हे वठ पंज थई मा वठ पंज गण हणंदी सिंह चमाट वेखा हे वठ पंज थई। वो है तो वही का भाई लेकिन अर्थ बदल गया। गुस्से में क्रोध में कहा तो तू पांचों ज्ञान इंद्रियों का दुरुपयोग कर रहा है, पतन के तरफ जा रहा है, जा तू मर बर्बाद हो। और माँ कहती वठ मोही पंज थी वठ कौन तो नहीं चमट वठ है टक्को खपे थी वठ गण माणे जो टक्को वठ पिणे जो ही टक्को थी। प्यार से दिया तो मानो पांचों हूँ विकारों से तू पार हो जा, माँ और बाप का प्रेम पाकर असली बाप का हाथ पकड़ ले मुक्त हो जा बेटा। भेजा रे दुश्मन जी दुआ वणन सजणन जूं गारियूं छूं आहे सब ख्याल जो चरखो जगत दिलदार जी मूरत। विसारे पाण खे वेठे सदाए हाण संसारी भर्म खां तें सची भासे जगत जोड़ ही सारी। जगत रुञ में रखियो छाहे भुलल भटके न उञ लाहे डिनस डस जे डिसी डाहे मञे ना मूंढ मत मारी। आए न्यारो आए नित ने ही पर मञे प्यो पाण के देही पसे जे पाण में पेही संदस चांडाण चौधारी। गुरु के गगन ध्याए वचन वेदन जा दिल लाए पुत मुक्ति वरी पाए मिटे अज्ञान अंधकारी विसारे पाण के बैठे सदाए हान संसारी। अपने आत्मा को विसार कर अपने मरने वाले शरीर को मरने वाले संपद संबंधों को मैं सेठ मैं फैक्ट्री वाला मैं फलाने वाला मैं बेटों वाला मैं पत्नी वाला मैं स्कूटर वाला इन चीजों से तू अपने को बना के बैठा अपने असलियत को विसार दिया। विसारे पाण के बैठे सदाए हान संसारी जो सरकने वाली चीजों से अपने को जोड़ के संसारी है। भर्म खाते हैं सच्ची भासे जगत जोड़ ही है सारी भ्रांति से ये जगत के जो जोड़ है सच्ची भासती है। जगत रुंज में रखो छाए भुलेल भटके न उंज लाए ये मृग मरीचिका में रखा क्या है कितना भी भटको लेकिन तृप्ति नहीं मिलेगी। दिनस दस जे डिसी डाहे मंजना मूढ़ मत मारी चतुर ज्ञानी पुरुषों ने इलाज बताया सत्संग सुनाए लेकिन मूढ़ मति वाला इस बात को मानता ही नहीं। गुरु के गगन ध्याए वचन वेदन जा दिल लाए पुत मुक्ति वरी पाए मिटे अज्ञान अंधकारी। गुरुओं को रिझाकर वेदों के ज्ञान को पाकर अपने हृदय में उन वचनों को रखे तो मुक्ति का अनुभव हो जाएगा सदा के लिए सब दुखों की निवृत्ति हो जाएगी। तरती शोकम आत्मवित आत्मवेता बन जाएगा सारे शोकों से पार हो जाएगा। तुम शोक की आग में तपने के लिए नहीं आए हो तुम चिंता की चिता में जलने के लिए नहीं आए हो तुम मोह माया के दलदल में गिरने के लिए नहीं आए हो तुम तो अमर आत्मा परमात्मा का आनंद पाकर आनंद स्वरूप आत्मा मय होने के लिए तुम्हारा मनुष्य जन्म हुआ है। क्यों अपने को खफा करते हो अपने को क्यों सताते हो क्यों अपने को परेशान करते हो। आपका अपना आनंद इधर उड़ेलते उधर उड़ेलते उधर उड़ेलते और फिर उन्हीं वस्तुओं के गुलाम बन जाते जैसे कुत्ता है ना हड्डी चबाते चबाते मेड़ों में घाव हो जाता है फिर मेड़ों से खून निकलता है वो बेवकूफ समझता है कि हड्डी में से मजा आ रहा है। ऐसे रात भर सोए फ्रेश हुए फिर गए क्रिकेट देखने के लिए हाँ तुम्हारी एनर्जी तो हाँ हाँ करके तुमको उधर मजा दे रही है वास्तव में है तो तुम्हारी रात भर जगे होते और थके होते फिर क्रिकेट देखो तो मजा नहीं आएगा। ऐसे 8 दिन का 10 दिन का महीने का 15 दिन का संयम का आपके पास सामर्थ्य है लवर लवरी तेरे बिना भी क्या जीना तो लवर समझता कि लवरी का शरीर अमृत के घड़े से बना है लवरी समझती कि लवर का ये बॉडी बस अमृत में बना है। जब वो एक दूसरे की एनर्जी नष्ट होती पड़े रहते वो आप अपनी शक्ति गलत ढंग से खफा होकर खर्च करते उसी शक्ति को संयम से बच्चे को जन्म देने के लिए सदुपयोग कर दिया तो ठीक है उसी शक्ति को शक्तिदाता के ध्यान में लगा दिया तो आप शक्तिदाता के साथ परमेश्वर के साथ एक हो जाएंगे।